पृष्ठ संख्या 38, 3, 20वीं शती के तीसरे दशक से हिंदी आलोचना में जो परिवर्तन आया उसे लक्ष्य कर आचार्य शुक्ल ने कहा, इस तृतीय उत्थान सन 1800 ईस्वी में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया। ब्रैकेट में हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 516। इस कथन में शालीनतावश जिस बात का उल्लेख नहीं किया गया वह यह है कि हिंदी आलोचना में कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर पहले पहल ध्यान स्वयं शुक्ल जी ने ही दिया था, किंतु आलोचना का आदर्श बदलकर उसे युगानुरूप ढालने की जो आवश्यकता शुक्ल जी ने सहज ही अनुभव कर ली थी, उसकी पृष्ठभूमि उन परिवर्तनों ने तैयार की थी जो एक बड़े पैमाने पर साहित्य के रंगमंच पर क्रमशः घटित हो रहे थे। सरस्वती के संपादकत्व में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1920 ईस्वी में संन्यास ग्रहण करना जैसे आलोचना में एक युगांत का सूचक था। 1916 ईस्वी के आसपास छायावाद का उदय हुआ। प्रेमचंद ने साहित्य रचना द्विवेदी जी के समय में ही आरंभ कर दी थी, परंतु उनकी महत्वपूर्ण कृतियों का सिलसिला तीसरा दशक आरंभ होते ही शुरू हुआ। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद स्वयं एक प्रवृत्ति थे, अतः कविता और गद्य दोनों में नवीन प्रवृत्तियों के उदय ने जैसे आलोचना के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की, यह बात एक बार ही स्पष्ट हो गई कि इस साहित्य का मूल्यांकन रीतिकालीन मानदंडों से नहीं किया जा सकता। इस नए साहित्य के माध्यम से आने वाले सवाल नए थे, अतः उनके मूल्यांकन के पैमाने और दृष्टिकोण का भी नया होना जरूरी था। चूंकि नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती जैसी पत्रिकाएं एक खास दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती थीं और एक विशेष आवश्यकता को पूरा करती थीं, पृष्ठ संख्या 39, इसलिए साहित्य की बदली हुई अपेक्षाओं की दृष्टि से वह शायद नाकाफी समझी गईं। इस समय माधुरी, मर्यादा, सुधा, इंदु, श्री शारदा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ आकस्मिक नहीं है। इन पत्रिकाओं ने आलोचना की बदली हुई चेतना का वहन किया। छायावाद की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए मुकुटधर पांड्य ने इस विषय पर चार लेखों की पहली लेखमाला श्री शारदा 1920 ईस्वी में प्रकाशित कराई। साहित्य के क्षेत्र के अलावा इसी समय शैक्षिक जगत में भी एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने हिंदी आलोचना को बहुत दूर तक प्रभावित किया। देश में स्वतंत्रता आंदोलन का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। जनता और विशेषकर शिक्षित समाज में स्वभाषा और साहित्य के प्रति सजगता निरंतर बढ़ रही थी। इसी गौरव बोध के परिणाम स्वरूप भारत के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन का सिलसिला आरंभ हुआ। 1920 ईस्वी के आसपास काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना हुई। शिक्षा का विषय बन जाने के कारण अन्य विषयों की तरह हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन की सुव्यवस्थित प्रणाली का विकास आवश्यक हो गया। व्यक्तिगत रुचि और राग द्वेष से मुक्त वातावरण में वाद विवादों से ऊपर उठकर साहित्य के गंभीर अध्ययन और मनन की आवश्यकता भी समझी जाने लगी और इसके लिए उपयुक्त अवसर भी उपस्थित हुआ। इस प्रसंग का एक दूसरा पक्ष भी है। विश्वविद्यालयीय आलोचक के सामने यह खतरा हमेशा बना रहता है कि वह सृजनात्मक साहित्य से दो कदम पीछे रहने के आग्रह के कारण पिछड़ जाता है और संतुलन एवं निष्पक्षता बनाए रखने के फेर में उसकी आलोचना अक्सर निष्प्राण हो जाती है। वह अन्य विषयों की भांति एक निश्चित अनुशासन से बंधा रहकर विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए शिक्षोपयोगी सामग्री जुटाता रहता है, परंतु इन सारे खतरों के बावजूद खड़ी बोली हिंदी में गंभीर रूप से शास्त्रीय चिंतन का आरंभ उन्हीं ग्रंथों से हुआ जो मूल रूप से स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में रखने के लिए तैयार किए गए थे। 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक जैसे हिंदी आलोचना का संक्रमण काल है। साहित्य में नई प्रवृत्तियों के उदय के समसामयिक साहित्य के साथ आलोचना के जीवंत संपर्क की अनिवार्यता सिद्ध कर दी थी। रीतिकालीन संस्कार भी सर्वथा निःशेष नहीं हुआ था। विश्वविद्यालयों में शिक्षोपयोगी पृष्ठ संख्या 40 व्यवस्थित और अनुशासित चिंतन की मांग बढ़ रही थी। प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य से संबद्ध प्रश्नों पर पत्रिकाओं में अनेक विवाद चालू थे। पत्र पत्रिकाओं में शोध निबंधों के माध्यम से बहुत सी अप्राप्य सामग्री सामने लाई जा रही थी। सैद्धांतिक चिंतन की दिशा में एक ओर तो संस्कृत काव्यशास्त्र की उद्धरणी के प्रयत्नों का क्रम जारी था और दूसरी ओर पाश्चात्य साहित्य आलोचन के सिद्धांतों के आयात का सिलसिला भी चल निकला था। कहीं कहीं इनके मिले जुले रूप से हिंदी में शास्त्रीय चिंतन की अलग परंपरा का आरंभ करने का प्रयास भी दिखाई पड़ रहा था। संक्रमण काल की इन विविधतापूर्ण प्रवृत्तियों के बीच आचार्य रामचंद्र शुक्ल ब्रैकेट में 1884 से 1940 ईस्वी अकेले ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने परंपरागत आलोचना शैलियों के प्रति सम्मान का भाव रखकर भी अपने युग की आवश्यकताओं को पहचाना और उनके अनुरूप सही अर्थों में हिंदी की अपनी आलोचना शैली को जन्म दिया। शुक्ल जी ने नागरी प्रचारी सभा में हिंदी शब्द सागर के संपादन से आरंभ किया और विश्वविद्यालय में अध्यापन से इति। किंतु इस यात्रा के बीच वे निरंतर पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। अपने समय के सभी साहित्यिक विवादों के प्रति सजग रहकर उन्होंने उनके बारे में अपनी राय व्यक्त की। शब्द सागर की भूमिका के रूप में साहित्य इतिहास की रचना की। पद्मावत जैसी महत्वपूर्ण कृति का संपादन ही नहीं किया, व्याख्या द्वारा उसे समझने समझाने का प्रयास भी किया। हिंदी के तीन महान कवियों तुलसी जायसी सूर के ग्रंथों की भूमिकाएं लिखी। अपने इतिहास में और बातों के अतिरिक्त साहित्यकारों के कृतित्व के संबंध में मूल्यांकन परक मत व्यक्त किए। मूल्यांकन क्रम में जिन सिद्धांतों को वह काम में लाते थे लगे हाथों उन्हें शास्त्र चिंतन का रूप भी देते जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अंत में वह स्वयं विश्वविद्यालय के अनुशासन में बंध गए पर उनकी आलोचना शैक्षिक जड़ता से मुक्त रही। गरज एक ही, आलोचना के इतिहास में शुक्ल जी की भूमिका युग पुरुष की थी। हिंदी आलोचना के जिस दौर को शुक्ल युग कहा गया है वह हिंदी में वास्तविक आलोचना का प्रस्थान बिंदु है। यहीं से हिंदी की आलोचना गुणदोष विवेचन तारतमिक श्रेणी विभाग या रीति कवियों के बीच श्रेष्ठत्व की उहापोह से आगे बढ़कर सही रूप और सार्थक भूमिका ग्रहण करती दिखाई पड़ती है। पृष्ठ संख्या 41। आचार्य शुक्ल के हाथ हिंदी आलोचना की बागडोर आते ही जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात घटित होती है वह है साहित्यिक रुचि में परिवर्तन। देव और बिहारी और बिहारी और देव के तुलनात्मक अध्ययन से स्थानांतरित होकर सारा बल भक्तिकालीन साहित्य पर जा टिकता है और इस प्रकार एक बार ही हिंदी आलोचना का केंद्र बदल जाता है। केवल तुलना के लिए ही नहीं टीका व्याख्या के लिए भी अब तक हिंदी के आलोचक रीति साहित्य को ही सर्वाधिक उपयुक्त विषय मानते थे। ऐसी पृष्ठभूमि में अवतरित होकर आचार्य शुक्ल ने पूरी साहित्यिक परंपरा का पुनर्गठन किया। बिना नंबर दिए भी उन्होंने अपनी व्यवहारिक आलोचना के माध्यम से हिंदी कवियों का जो तारतमिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया वह उनके समय की बदली रुचि का प्रमाण है और इस रुचि के निर्माण का श्रेय आचार्य शुक्ल को ही दिया जाएगा। पाठक में अच्छे बुरे के बीच अच्छे साहित्य के चुनाव की पहचान पैदा करने को मिश्र बंधु आलोचक का प्रमुख दायित्व तो मानते थे। शुक्ल जी ने भी जैसे यही काम किया पर मूल्यांकन की परीक्षा पद्धति से नहीं जिसे वह एक बेहुदा बात समझते थे बल्कि व्याख्या विश्लेषण की पद्धति से। कोई आलोचक किन साहित्यिक मूल्यों को महत्व देता है इसका प्रमाण उसकी साहित्यिक पसंद नापसंद से मिलता है। अपने आलोचक कर्म के दौरान वह किस प्रकार के साहित्य को मान्यता देता चलता है, साहित्य में वह किन विशेषताओं को तरजीह देता है और नापसंदगी की स्थिति में किन बातों की निंदा करता है, इससे उसके साहित्यिक मूल्य उसकी जीवन दृष्टि उभर कर सामने आती है। आचार्य शुक्ल ने व्यवहार में ही अपनी रुचि भक्तिकालीन साहित्य के प्रति नहीं दिखाई। सिद्धांत में भी रीति ग्रंथों के बुरे प्रभाव की चर्चा की। उनका विश्वास था कि अपने देश की साहित्यिक रुचि को जकड़बंद करने में रीति ग्रंथों का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं रीति ग्रंथों के कारण कवियों की दृष्टि संकुचित हो गई। लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे। काव्य का स्वरूप संगठित करने के स्थान पर वह बाहरी सजावट में अधिक उलझने लगे। रसमीमांसा पृष्ठ 75। शुक्ल जी का विरोध सजावट से उतना नहीं है जितना लक्षणों की कवायद पूरी करने से और काव्य में उनके सापेक्ष महत्व से है। सजावट करने वाला व्यक्ति कला निपुण हो सकता है और शुक्ल जी कला निपुणता और पृष्ठ संख्या 42 सहृदयता को एक ही वस्तु ना मानते हुए कवि के लिए दोनों की अनिवार्यता स्वीकार करते थे, जिसे उन्होंने काव्य का स्वरूप संगठित करना कहा है। उसका आधार सहृदयता ही हो सकती है। शुक्ल जी का रसवाद इसी अर्थ में रीति ग्रंथों के रस निरूपण से भिन्न था कि वह उसमें गिनी गिनाई बातों की निर्दिष्ट शैली के अनुसार आंख मूंद कर कह देने की रस्म अदायगी के पक्ष में ना थे। उन्होंने अपने रसवाद में अनुभूति को सर्वोपरि महत्व देकर उसे लोकमान्य के व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित किया था। उनके यहाँ न विषयों की सीमा थी न उनके स्वरूप की, केवल आवश्यकता थी तो मानव प्रकृति के अन्वीक्षण की। उन्होंने इसीलिए भावों के स्वरूप प्रदर्शन और श्रोता के हृदय में उसके संचार के बीच भेद किया। सच्चे काव्य का प्रकृत लक्ष्य वह शास्त्र में गिनी गिनाई बातों का इकट्ठा करना नहीं, बल्कि पदार्थों के साथ भावों के प्रकृत संबंध का प्रत्यक्षीकरण, जगत के साथ हमारी रागात्मिका वृत्ति का सामंजस्य, वही पृष्ठ सिद्ध करना मानते थे। इस प्रकार शुक्ल जी के लिए काव्य की रसात्मकता का अभिप्राय था रागात्मकता या अनुभूति प्रवणता। काव्य में सापेक्षता की दृष्टि से भी वह कल्पना और बुद्धि के ऊपर अनुभूति तत्व को प्राथमिकता देते हुए अनुभूति प्रधान काव्य को ही उत्तम काव्य समझते थे। परंतु इस संबंध में एक बात ध्यान रखने की है, अनुभूति को प्रधानता देकर भी शुक्ल जी उसमें ऊंची नीची भूमिका भेद करते थे। उन्हें बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव विधान में दिखाई पड़ा। बिहारी के श्रृंगार वर्णन का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा कि अनुभवों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। ब्रैकेट में हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 299। इसी प्रकरण में उन्होंने बिहारी के काव्य में संचारी भावों की व्यंजना की मर्मस्पर्शिता की प्रशंसा की, पर साथ ही वह यह कहने से ना चूके कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है, वही पृष्ठ 303। इस प्रकार वह अनुभूति की एक उच्च भूमि अर्थात अनुभूति के औदात्य के समर्थक थे। काव्य में अनुभूति का समर्थन करते हुए भी शुक्ल जी को अनुमति की एकांतिक स्थिति मान्य ना थी, इसीलिए उन्हें कामायनी में प्रसाद का ईड़ा विरोधी श्रद्धावाद समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रत्येक भाव का प्रथम अवयव विषय बोध ही होता है। इसलिए बोध तत्व को भाव भूमि से खारिज नहीं किया जा सकता। पृष्ठ संख्या 43। कदाचित इसी कारण शुक्ल जी ने जिसे प्रसाद का एकांत श्रद्धावाद समझा उसका विरोध कर उसमें ईड़ा पक्ष के समन्वय का समर्थन किया। शुक्ल जी की अनुभूति की अवधारणा एक बात में और विशिष्ट है। अनुभूति को प्रधानता देकर भी उन्होंने काव्य में विषयी प्रधानता को प्राश्रय नहीं दिया। अनुभूति की प्रकृत अभिव्यक्ति को उत्तर छायावादी काव्य और आलोचना में भी महत्व दिया गया, परंतु शुक्ल जी ने इन आलोचकों की आत्मअभिव्यक्ति प्रधान अनुभूति से भिन्न जिस रसवाद की प्रतिष्ठा की उसमें व्यक्ति हृदय से आगे बढ़कर लोकमानस और लोक हृदय के साथ रागात्मक संबंध को प्रमुखता दी। लोक हृदय में सहृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। रसमीमांसा पृष्ठ 207। उनका यह रस मार्ग अंतर्मुखी ना होकर बहिर्मुखी था। उन्होंने भारतीय रसवाद को जो लोक संप्रकृति का आयाम दिया उसका निर्वाह प्रबंध के विस्तृत कलेवर में ही संभव था। इसीलिए वह मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता कहकर भी विस्तृत वनस्थली के समान प्रबंध काव्य के सौंदर्य के ही कायल थे। प्रबंधकार कवि की भावुकता की सबसे बड़ी पहचान वह इस बात में समझते थे कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। त्रिवेणी पृष्ठ 114। इसीलिए वह एक निश्चित सीमा से आगे ना मुक्तक काव्य का समर्थन कर सके ना गीतात्मकता का। काव्य में जिस लोक मंगल की साधना को वह काम्य मानते थे, उनके अनुसार उसका निर्वाह जैसे प्रबंधों में हो सकता था, वैसा मुक्तक में नहीं। इसीलिए मुक्तक में भी अंतर्मुखी गीत रचना की अपेक्षा वह वस्तु उन्मुख या लोकोन्मुख स्फुट छंदों को बेहतर समझते थे। काव्य और कलाओं के माध्यम से सिद्ध होने वाले भाव योग या अनुभूति योग को शुक्ल जी ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष मानते थे। मुक्त हृदय मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। रसमीमांसा पृष्ठ 6। अपने भाव विवेचन में शुक्ल जी ने करुणा को जो अत्यधिक महत्व दिया है, उसका कारण भी यही है कि वह करुणा को ही लोक सत्ता से व्यक्ति सत्ता को मिलाने वाला भाव मानते हैं। यही वह भाव है जो अविलंब आश्रय को अवलंबन के साथ जोड़ता है, आत्म प्रसार का कारण बनता है और पृष्ठ संख्या 44 अंततः जीवन में लोक मंगल का विधान करता है। शुक्ल जी के भाव और मनोविकार संबंधी विवेचन से यह स्पष्ट है कि वह हर विषय का अध्ययन विश्लेषण सामाजिकता के संदर्भ में करते थे। लोक मंगल की अवधारणा से संगत बैठा कर मानव मन की अंतर्वृत्तियों का जो विवेचन शुक्ल जी ने किया है, उससे उनके चिंतन में व्याप्त एक अंतःसंगति का स्पष्ट बोध होता है। उनका करुणा और प्रेम का विवेचन इसका प्रमाण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसीलिए शुक्ल जी की काव्य समीक्षा में बड़े समारोह के साथ सामाजिक संपर्क का आह्वान ब्रैकेट में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पृष्ठ 59 देखा है। दरअसल शुक्ल जी की लोकमंगल की चिंता एक ऐसी मानवीय दृष्टि से उद्भूत है जिसके कारण काव्य की भावभूमि को वह न लोकोत्तर बनाना चाहते हैं न लोकेतर, वह उसे केवल लोक सामान्य भर बनाना चाहते हैं। शास्त्र में रसानुभव की जिस लोकोत्तरता की चर्चा की गई, उसकी जो व्याख्या शुक्ल जी करते हैं वह ध्यान देने लायक है। हमारे यहाँ लक्षण ग्रंथों में रसानुभव को जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा है, वह अर्थवाद के रूप में सिद्धांत रूप में नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। ब्रैकेट में हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 687। व्यक्तित्व का लय हो जाना मनुष्य के हृदय का स्वार्थ बंधनों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंच जाना ही है। साहित्य के संदर्भ में शुक्ल जी की सारी चिंता इसी लोक सामान्य की चिंता है। उनकी इसी जनतांत्रिक दृष्टि से उनका संपूर्ण सैद्धांतिक और व्यवहारिक विवेचन जुड़ा है। इसी कारण उन्हें तुलसी आदर्श कवि प्रतीत होते हैं। इसी दृष्टि को प्रधानता देते हुए वे भाव विभाव रस आदि की पुनर्व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। काव्य और कला के क्षेत्र में अध्यात्म शब्द को गैर जरूरी करार देते हैं और साधारणीकरण की पुनः प्रतिष्ठा कर व्यक्ति वैचित्र्य का विरोध करते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं कि लोकोत्तर स्तर से उतर कर शुक्ल जी काव्य अनुभूति का अवमूल्यन कर रहे थे। योग तंत्र रसायन आदि को रहस्य मार्ग मानकर वे उनकी साधनात्मक महत्ता को स्वीकार करते थे, पर प्रकृत भावभूमि या काव्य भूमि से उनका संबंध नहीं बिठा पाते थे। इसीलिए उन्होंने कबीर के रहस्यवाद का विरोध किया और छायावादी काव्य में रहस्य तत्व का पृष्ठ संख्या 45 रसानुभूति की लोक सिद्ध किंतु उदात्त भूमिका उन्हें पूरा बोध था। इसलिए उन्होंने पूरे आक्रोश से पश्चिम के कलावाद और भारतीय काव्यशास्त्र के आनंद चमत्कार आदि शब्दों पर प्रहार किया। मेरी समझ में रसास्वाद का प्रकृत स्वरूप आनंद शब्द से व्यक्त नहीं होता। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। रसमीमांसा पृष्ठ 80। शुक्ल जी कविता की भावभूमि की व्याप्ति लोक और जीवन के सभी पक्षों तक मानते थे। काव्य के विभागों की चर्चा करते हुए उन्होंने उसमें जीवन के प्रयत्न पक्ष और उपभोग पक्ष, साधना अवस्था और सिद्धावस्था दोनों को समेटकर सर्वोपरि महत्ता साधना अवस्था को दी। साधनावस्था के अंतर्गत उन्होंने विरुद्धों के सामंजस्य में ही लोक धर्म का सौंदर्य देखा। इस प्रकार सौंदर्य की परिधि में रूप के साथ कर्मशील और शक्ति के सौंदर्य का समाहार हुआ। सौंदर्य के इस विराट रूप का विधान उन्होंने प्रधान रूप से अमंगल के विरोध में माना, अस्थाई संचारियों की। शास्त्रीय सूची में जब उन्हें इस सौंदर्य को धारण करने वाले नायक की वृत्ति के लिए कोई नाम ना मिला तो उन्होंने बीज भाव की कल्पना की। इसी बीज भाव में विरोधी भावों की सामंजस्यपूर्ण स्थिति उनके स्फुरण की क्षमता स्वीकार की। प्रकृति के भी कोमल रम्य रूपों की अपेक्षा उग्र कराल या भयंकर रूपों को उन्होंने अधिक महत्व दिया और सच्चे कवि हृदय की पहचान यह बताई कि उसका हृदय प्रकृति के इन सब रूपों में लीन होता है। चिंतामणि भाग एक पृष्ठ 149। शुक्ल जी ने काव्य के आलंबन का जो परिधि विस्तार किया उसमें नर प्रकृति के साथ नरेतर प्रकृति भी समाहित हो गई। जो शुक्ल जी छायावाद के सांप्रदायिक रहस्यवाद का विरोध करते थे वही प्राकृतिक रहस्यवाद के समर्थक थे। छायावादी काव्य और शुक्ल जी की आलोचना में जो प्रकृति प्रेम दिखाई पड़ता है उसकी जड़ें एक ही युग के सामान्य भावबोध में निहित हैं। इसका प्रमाण यह है कि शुक्ल जी ने वहाँ तक छायावाद को ग्रहण कर लिया जहाँ तक उसका स्वरूप स्वच्छंदतावाद के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग का था। पल्लव की रहस्यात्मक रचनाएं उन्हें इसीलिए रास आईं क्योंकि पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक डॉगमैटिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्य जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में पृष्ठ संख्या 46 कभी कभी उठा करती है। व्यक्त जगत के नाना रूपों और व्यापारों के भीतर किसी अज्ञात चेतन सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप्त जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 842। इस प्रकार हृदय के धरातल पर प्रकृति के अनंत रमणीय रूपों के प्रति जो स्वाभाविक जिज्ञासा कवि हृदय में उठा करती है उसे वह मान्यता देते थे। नरेतर जगत के उन आदिम रूपों का जिनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है काव्य के माध्यम से सामने लाया जाना शुक्ल जी अनिवार्य समझते थे। सभ्यता के आवरण को पार कर इन आदिम और वन्य रूपों और प्रवृत्तियों के प्रति उनका मोह उनके युग की रोमांटिक चेतना के साथ कहीं ना कहीं उनकी आलोचना की संगति बैठाता है। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना में जहाँ काव्य की लोक मंगल विधायिनी प्रकृति काव्य के विषय जगत और जीवन के नाना रूपों से उसके संबंध पर विचार किया वहाँ रीति ग्रंथों में विहित अभिव्यक्ति की परिपाटी पर भी। इस संबंध में ध्यान देने की पहली बात यह है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य की आलोचना और आलोचना के सिद्धांतों में स्पष्ट अंतर किया है। पहली को वह समालोचना कहते हैं और दूसरे को काव्य मीमांसा। इसीलिए तृतीय उत्थान के अंतर्गत जब समालोचना और काव्य मीमांसा शीर्षक देकर विचार करते हैं तो बाबू श्याम सुंदर दास के साहित्य आलोचन की चर्चा काव्य मीमांसा के रूप में करते हैं। उनके सिद्धांत विवेचन के बारे में ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि साहित्य के ग्रंथों में उपलब्ध लक्षण नियम आदि को शुक्ल जी केवल विचार की व्यवस्था के लिए काव्य संबंधी चर्चा के सुविधे के लिए ही ग्रहण करने के पक्ष में थे। वह इस बात से चिंतित थे कि इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब परिवर्तन ब्रैकेट में रिएक्शन का समय आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 690। इसलिए हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। वही जब शुक्ल जी को पश्चिम के कलावाद में और मध्ययुग के अलंकारवाद में बात हद से बाहर होती दिखाई दी तो उन्होंने दोनों प्रवृत्तियों का विरोध भी किया और नई व्याख्या भी की। पश्चिम के कलावाद और अभिव्यंजनावाद की हिंदी कविता में भद्दी नकल पर उन्होंने निर्ममता से प्रहार किया पर पृष्ठ संख्या 47। छायावाद की अभिव्यंजना शैली का विवेचन करते हुए उन्होंने छायावादी कवियों की शैली में अलंकार प्रयोग की नवीनता को लक्ष्य करके उसकी प्रशंसा भी की। रीतिकाल में कल्पना का प्रयोग मुख्य रूप से अलंकार विधान के साधन के रूप में किया जाता था। शुक्ल जी ने उसके कर्म क्षेत्र का परिधि विस्तार किया और उसका स्थान अनुभूति के अधीन नियत कर दिया। काव्य का आभ्यंतर स्वरूप या आत्मा या भाव या रस है, अलंकार उसके बाह्य स्वरूप है। दोनों में कल्पना का काम पड़ता है, जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है। तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है, वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभावन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कर्म क्षेत्र वही है, पर वहां उसे अनुभूति या रागात्मिका वृत्ति के आदेश पर कार्य करना पड़ता है। रस मीमांसा पृष्ठ 83। शुक्ल जी रस का आधार खड़ा करने वाले विभावन व्यापार को काव्य में सर्वोपरि महत्व देते थे। विभावन व्यापार की प्रतिष्ठा, दूसरे शब्दों में, काव्य में वस्तु तत्व मूर्त विधान की प्रतिष्ठा है। प्रबंध के विस्तृत कलेवर में शुक्ल जिन्हें विभावन व्यापार को वस्तु विधान, चारित्र्य और दृश्य योजना के रूप में देखा है, और मुक्तक एवं गीतों में चित्रात्मकता और मूर्त विधान के रूप में। काव्य की भाषा की विशिष्टता ही इस बात में है कि कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। रस मीमांसा पृष्ठ 33। क्योंकि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, वही पृष्ठ 134। और वह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है, वही। इस तरह एक ओर तो विभावन व्यापार, गोचर और मूर्त विषय की बात कर शुक्ल जी ने काव्य में वस्तु तत्व की प्रतिष्ठा की, और दूसरी ओर मूर्त विधान, चित्रात्मकता आदि को शैली के गुणों के रूप में स्वीकार किया। इस संदर्भ में उन्होंने काव्य कला का संबंध दूसरी ललित कलाओं से जोड़कर देखा। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ सहारा लेती है। रस मीमांसा पृष्ठ 37। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शुक्ल जी ने नाद सौंदर्य पैदा करने की पुरानी परिपाटी के भाव शून्य हो जाने का भी संकेत किया, और इस बात पर जोर दिया कि नाद सौंदर्य का समावेश मूलतः भाव का, रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए होना अभीष्ट पृष्ठ संख्या 48 है। और यह भी कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। रस मीमांसा पृष्ठ 38। शुक्ल जी के विवेचन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह किसी भी सिद्धांत में उसके रूढ़ रूप को छोड़कर मूल मंतव्य तक पहुँचने का प्रयास किया करते थे। जहाँ परंपरा उनका साथ नहीं देती थी, वहाँ वह आवश्यकता और सुविधा के अनुकूल अपनी मौलिक व्याख्याएं प्रस्तुत करते थे। इसीलिए शुक्ल जी ने सौंदर्य शब्द की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। यूरोपीय कला समीक्षा और भारतीय अलंकार शास्त्र दोनों में इस शब्द की अलग-अलग प्रयोग परंपरा थी। शुक्ल जी ने इन दोनों से भिन्न सौंदर्य की अपनी व्याख्या की। उन्होंने सौंदर्य को रंग रूप से आगे बढ़कर कर्म और मनोवृत्ति में खोजा, और उसकी कसौटी इन शब्दों में निर्धारित की। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। वही पृष्ठ 25। शुक्ल जी के आलोचक व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता उनकी व्यापक और सजग दृष्टि थी। अपने समय के हर साहित्यिक विवाद की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उस पर राय भी दी। वह चाहे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का प्रश्न हो, या विद्यापति की श्रृंगारिकता या भक्ति पर बहस हो, जितने लगन से वह प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य का विवेचन करते थे, उतना ही ध्यान आधुनिक साहित्य और विषयों पर भी देते थे। छायावाद और छायावादी कवियों का उनका विवेचन इसका प्रमाण है। जिस साहित्य में सदियों से कविता की प्रभुता रही हो, उसमें निबंध का विवेचन करते हुए यह कहना बहुत साहस की ही नहीं, सूझबूझ की भी बात है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 605। उन्होंने अपने समय के गद्य साहित्य की सभी पद्धतियों और प्रवृत्तियों को समझा, परखा और इतिहास में उनका विवेचन किया। छोटी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, समालोचना, सभी की मूल विशेषता को वे खूब पहचानते थे। प्रेमचंद के उपन्यासों में यथार्थवादी जीवन दृष्टि, भारतीयता और सामाजिकता को ही लक्ष्य कर वह उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार घोषित कर गए। आचार्य शुक्ल के हाथों वस्तुतः हिंदी की एक निजी प्रौढ़ आलोचना शैली पृष्ठ संख्या 49 का विकास हो चुका था। यह शैली पश्चिम के कलावाद और हिंदी के मध्ययुगीन अलंकार रीतिवाद से भिन्न हिंदी की अपनी ठेठ मौलिक आलोचना शैली थी। उनकी आलोचना की खास बात यह थी कि उन्होंने शास्त्र की सर्वथा मौलिक व्याख्या कर उसे आधुनिक और समयोपयोगी बनाया। द्विवेदी युग में ही काव्य के प्रति जिस बदली रुचि का आभास मिलने लगा था वह शुक्ल जी के समय तक सर्वथा स्पष्ट हो गई थी। आलोचना के केंद्र में रीतिकाल के देव बिहारी और मतिराम आदि कवियों के स्थान पर भक्त कवि तुलसी और सूर प्रतिष्ठित हो गए थे। उनके मूल्यांकन के लिए रीति अलंकार सिद्धांत अपर्याप्त था। शुक्ल जी ने इसलिए अलंकारवाद के स्थान पर भारतीय रसवाद की पुनः प्रतिष्ठा की और उसे लोक संप्रगति का विस्तृत आयाम देकर आधुनिक और प्रासंगिक बनाया। उन्होंने प्राचीन भारतीय रसवाद से रागात्मक या अनुभूति प्रवणता तुल्य पर उसे अंतर्मुखी वैयक्तिक साधना न मानकर अनुभूति योग के नाम से लोकमानस और लोक हृदय के साथ रागात्मक संबंध का रूप दिया। जिन परवर्ती रसवादियों का काव्य संसार उत्तर छायावादी काव्य के रोमानवाद से निर्मित हुआ था, उनकी आत्मनिष्ठ विषयी परक रस व्याख्याओं और शुक्ल जी के रसवाद में यही मौलिक अंतर है कि शुक्ल जिन्हें अपनी रस धारणा का निर्माण सामाजिकता के संदर्भ में किया था, उनका रस मार्ग अंतर्मुख ना होकर बहिर्मुख था। उनकी सारी चिंता व्यापक लोकमानस की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने रस की लोकोत्तरता का विरोध कर उसे लोक भूमि पर उतारा। इसीलिए उन्होंने रूप सौंदर्य के समानांतर कर्म या शील सौंदर्य को महत्व दिया और मुक्तक एवं प्रगीतों की तुलना में उन प्रबंध काव्यों का समर्थन किया जिनमें जीवन के व्यापक स्तर पर इस कर्म सौंदर्य के चित्रण का अवकाश हो। स्थायी भावों में करुणा को सर्वाधिक महत्व देने के मूल में भी उनकी यही मानववादी दृष्टि है। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्थूल नैतिक उपयोगितावाद को भावात्मक मानवतावाद का रूप देकर आलोचना के प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके हाथों हिंदी में पहली बार आलोचना को सृजनात्मक साहित्य के समतुल्य गरिमा मिली। शुक्ल जी के बारे में यह शंका व्यक्त की गई है कि जितने कौशल से वह व्यावहारिक आलोचना करते थे, उनकी सिद्धि उन्हें अपने द्वारा प्रयुक्त प्रतिमानों को सूत्रबद्ध करने में प्राप्त नहीं थी, परंतु शुक्ल जी ने ऐसा प्रयास पृष्ठ संख्या 50 ना की हो यह नहीं कहा जा सकता। रसमीमांसा की रचना आलोचना के अपने प्रतिमानों को सिद्धांतबद्ध करने का ही प्रयत्न है, पर सवाल दूसरा है। यह सफल आलोचक इस बात के लिए बाध्य है कि वह अपनी आलोचना पद्धति को सैद्धांतिक रूप जरूर दे। शैक्षिक आवश्यकता के अनुरोध से हिंदी में अकादमिक आलोचना की जो परंपरा विकसित हुई उसके समारंभ का श्रेय बाबू श्याम सुंदर दास ब्रैकेट में 1875 से 1945 ईस्वी को है। बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्य आलोचन की भूमिका में स्वयं स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना MA के पाठ्यक्रम में उपयुक्त आलोचनात्मक ग्रंथ के अभाव को पूरा करने के लिए की। स्पष्ट है कि ऐसे ग्रंथ का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय की अधिकाधिक जानकारी देना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से उपलब्ध सामग्री को एकत्र कर व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना ही पर्याप्त था। वस्तुतः बाबू श्याम सुंदर दास ने इस ग्रंथ के बारे में मौलिकता का कोई दावा भी नहीं किया। उन्होंने तो पहले संस्करण की भूमिका में ही स्वीकार कर लिया था कि इस ग्रंथ की रचना करने के लिए उन्होंने अनेक भारतीय और पाश्चात्य ग्रंथों को आधार बनाया था। ऐसे ग्रंथों की सूची भी पुस्तक के अंत में दी गई है। इसी विशेषता के कारण संभवतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके विषय में कहा था, शिक्षोपयोगी तीन पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 622। ऐसी स्थिति में इस रचना का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा पहली बार हिंदी समालोचना को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में गंभीरता से अध्ययन अध्यापन का विषय बनाकर प्रतिष्ठित किया गया। साहित्य आलोचन की रचना से बाबू साहब ने उस पूर्ण आलोचना शास्त्र की नींव डाली जो पूर्व और पश्चिम के भेद से मुक्त शास्त्र मात्र होता है। संपूर्ण ग्रंथों के परिच्छेदों का क्रम, विषय का विभाग आदि अपने मन में बनाकर उनकी रचना आरंभ की गई। अतः लेखक के अनुसार मौलिकता ग्रंथ की योजना में है, किंतु ग्रंथ के क्रम विभाग, अध्यायों, शीर्षक आदि पर भी हडसन का गहरा प्रभाव है। बाबू साहब ने पाश्चात्य कला विवेचन का अनुसरण करते हुए साहित्य का स्थान ललित कलाओं के बीच निर्धारित किया। साहित्य की विविध प्राचीन एवं नवीन विधाओं का विवेचन किया। ऐसा करते हुए उन्होंने परंपरागत और नवागत दोनों पद्धतियों को मान्यता दी। पृष्ठ संख्या 51। उन्होंने रस और अलंकार जैसे परंपरा अनुमोदित विषयों का भी विवेचन किया और उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि नवीन विधाओं का भी। नाटक पर उन्होंने अलग से रूपक रहस्य की रचना की। उन्होंने परिशिष्ट में और बातों के अतिरिक्त हिंदी साहित्य शास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्दों की सूची भी दी। उनका यह प्रयत्न हिंदी के आलोचना शास्त्र को स्वतंत्र रूप में विकसित करने का प्रयत्न ही कहा जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाबू साहब ने हिंदी भाषा और साहित्य नाम से साहित्य का इतिहास भी लिखा। बाद में इतिहास वाले अंश का प्रकाशन स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हुआ। इसके प्रकाशन से एक वर्ष पूर्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हो चुका था। शुक्ल जी के इतिहास के समकक्ष ना तो इस पुस्तक में आलोचनात्मक विश्लेषण है और ना मिश्रबंध विनोद के समान साहित्यकारों के विषय में पर्याप्त सूचनाएं हैं। फिर भी इस इतिहास की विशेषता इस बात में है कि इसमें साहित्य को भाषा और ललित कलाओं के विकास के व्यापक संदर्भ में रखकर देखा गया है। उनके दृष्टिकोण की व्यापकता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने पश्चिम की समीक्षा पद्धति में चर्चित फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत, कला के लिए कला, यथार्थवाद आदि का संक्षिप्त परिचय ही नहीं दिया, अपनी समझ से उनकी ग्राह्यता अग्राह्यता पर भी विचार किया। साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन को उन्होंने सांस्कृतिक आयाम भी दिया। इसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में कबीर ग्रंथावली का विद्वतापूर्ण संपादन किया और अपने शिष्य पीताम्बर दत्त वर्तवाल से निर्गुण काव्यधारा पर शोध कराया। बाबू श्याम सुंदर दास की आलोचना में मौलिकता का चमत्कार, सृजनात्मक स्फूर्ति और पठनीयता भले ही बहुत ना हो, किंतु उनका महत्व इसी बात में है कि उन्होंने काशी विश्वविद्यालय और नागरी प्रचारी सभा के माध्यम से हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन का गंभीर वातावरण तैयार किया। उन्होंने शास्त्र की दिशा में कार्य करने वाले अध्यापकों और शोधार्थियों को प्रोत्साहन दिया और हिंदी आलोचना के एक निजी व्यवस्थित शास्त्र के निर्माण की भूमिका तैयार की। तीसरे दशक की आलोचना के विकास में छायावादी कवियों का भी पृष्ठ संख्या 52 उल्लेखनीय योगदान है। छायावादी कवियों ने आलोचना को नई दिशा देने के लिए प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यिक मूल्यों का ही विरोध नहीं किया, बल्कि नए मूल्यों के प्रश्न पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से टक्कर भी ली। इस दृष्टि में सुमित्रानंद पंत के पल्लव का प्रवेश 1926 नए सृजन का ही नहीं, बल्कि आलोचना के नए प्रतिमानों का भी पहला प्रभावशाली घोषणा पत्र है। आलोचना के शास्त्रवादी प्रणाली से असंतोष प्रकट करते हुए पंत ने प्रवेश में लिखा कि हिंदी में सत समालोचना का बड़ा अभाव है। रस गंगाधर, काव्यादर्श आदि की बीड़ा के तार पुराने हो गए। वह अस्थायी संचारी व्यभिचारी आदि भावों का जो कुछ संचार अथवा विचार करवाना चाहते थे करवा चुके। जब तक समालोचना का समयानुकूल रूपांतरण ना हो, वह विश्व भारती के आधुनिक विकसित तथा परिष्कृत स्वरों में न अनुवादित हो जाए, तब तक हिंदी में सत साहित्य की सृष्टि भी नहीं हो सकती। इससे मुक्ति का द्वार उन्हें विश्वविद्यालयों में ही दिखाई पड़ा। पंत ने आगे लिखा कि बड़े हर्ष की बात है कि अब हिंदी यूनिवर्सिटी की चिरवंचित उच्चतम कक्षाओं में भी प्रवेश पा गई। वहां उसे अपनी बहन अंग्रेजी के साथ वार्तालाप तथा हेलमेल बढ़ाने का अवसर तो मिलेगा ही, उनमें घनिष्ठता भी स्थापित हो जाएगी। आशा है विश्वविद्यालय के उत्साही हिंदी प्रेमी छात्र, जब तक हमारे वयोवृद्ध समालोचक बेचारे देव और बिहारी में कौन बड़ा है इसके निर्णय के साथ उनके भाग्यों का निपटारा करने तथा सहित शब्द में क्षण प्रत्यय जोड़कर सत साहित्य की सृष्टि करने में व्यस्त हैं, तब तक हिंदी में अंग्रेजी ढंग की समालोचना का प्रचार कर उसके पथ में प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। पृष्ठ 50। स्पष्ट है कि पंत की आशा के केंद्र विश्वविद्यालय के उत्साही हिंदी प्रेमी छात्र थे, वयोवृद्ध आचार्य नहीं। इसी आशा के वशीभूत होकर निराला उन्हीं दिनों छात्रों के निमंत्रण पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहस्यवाद पर व्याख्यान दे आए। प्रबंध प्रतिमा में प्रकाशित निबंध साहित्य की नवीन प्रगति 1928 ईस्वी से स्पष्ट है कि वह व्याख्यान वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद विरोध का जवाब था। रहस्यवाद तथा उससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नों को लेकर आगे चलकर जयशंकर प्रसाद की भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से टक्कर हुई, जिसका पृष्ठ संख्या 53 संकेतपूर्ण दस्तावेज है काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। इधर सुमित्रानंदन पंत उन्हीं प्रश्नों पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से उलझ रहे थे। आचार्य द्विवेदी ने सुकवि किंकर नाम से सरस्वती 1927 में छायावाद के विरुद्ध आज कल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक से जो प्रसिद्ध निबंध लिखा था, पंत ने तत्काल ही उसका उत्तर वीणा की विज्ञप्ति में दिया, जो आचार्य के दबाव से उस समय तो प्रकाशित ना हो सकी, पर बाद में गद्य पथ 1953 ईस्वी के अंतर्गत उसके प्रकाशित रूप से स्पष्ट है कि एक वयोवृद्ध आचार्य और तरुण कवि के बीच का वह विवाद कितना उग्र था। वैसे सुकवि किंकर को निराला ने भी अपने निबंध साहित्य की नवीन प्रगति पर 1922 में याद किया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे छायावादी कवि तत्कालीन आलोचकों के विरुद्ध एकजुट थे। साहित्यिक मान्यताओं को लेकर स्वयं छायावादी कवियों में भी मतभेद कम न था। पल्लव के प्रवेश में पंत ने छंदों के बारे में निराला से अपना मतभेद स्पष्टतः सामने रखा, और बदले में निराला ने भी पंत और पल्लव शीर्षक लेखमाला में पंत की कविता की आलोचना करके विचार भेद प्रकट कर दिया। सारांश यह है कि तीसरे दशक में साहित्यिक मूल्यों को लेकर अनेक स्तरों पर संघर्ष हो रहा था, और कुछ वैयक्तिक अभिनिवेशों के बावजूद उन विचारों से हिंदी आलोचना निश्चय ही विकसित तथा समृद्ध हुई, और इन विवादों के कारण प्रत्येक कवि के मौलिक विचार प्रकट हुए। छायावाद के ये कवि अपनी स्थापनाओं से भिन्न होते हुए भी एक बात में समान थे, पहले से चली आती आलोचना पद्धति को अपने काव्य के मूल्यांकन के लिए अपर्याप्त मानते हुए वे कहीं उग्र स्वर में उसे चुनौती देते थे और कहीं गंभीर मंद स्वर में उसका पुनराख्यान करते थे। पंत ने रसवाद के स्थूल बाह्य प्रपंच को निरर्थक घोषित किया, तो प्रसाद ने दार्शनिक धरातल पर संस्कृति और परंपरा से उसकी संप्रगति तथा तर्क सम्मत व्याख्यान कर उसे गरिमा दी। अपने ढंग से यह छायावाद के लिए एक गुरु गंभीर सिद्धांत शास्त्र के निर्माण का प्रयत्न था। शिल्प की दृष्टि से भी इन कवियों ने रीतिकालीन काव्य रुचि से भिन्न एक नए सूक्ष्म शिल्प बोध की आवश्यकता पर बल दिया। पल्लव के प्रवेश में पंत का काव्य भाषा विश्लेषण इसका प्रमाण है। पंत और निराला के छंद संबंधी विचार भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा की प्रकृति और विषयों की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने हिंदी के एक निजी पृष्ठ संख्या 54 छंद शास्त्र की आवश्यकता का अनुभव किया था। कहने का अभिप्राय यह कि एक कवि वस्तु और शिल्प दोनों स्तरों पर एक नए काव्य बोध की आवश्यकता का अनुभव कर उसके निर्माण का प्रयत्न भी कर रहे थे, और समसामयिक अनुरोधों की दृष्टि से अपने काव्य की व्याख्या और अपना पक्ष समर्थन भी करते जाते थे। निराला की अर्थ मीमांसाएं, प्रसाद के द्वारा छायावाद और यथार्थवाद का संबंध निरूपण, प्रगतिवाद के संदर्भ में महादेवी द्वारा छायावाद का पक्ष समर्थन भी इसी प्रकार के प्रयास हैं। छायावादी कवियों की आलोचनात्मक देन की चर्चा में याद रखने की बात यह है कि वह पेशेवर आलोचक ना थे और ना ही आलोचना उनका मुख्य कर्म था। ये आलोचनाएं वस्तुतः रचना कर्म के बीच से उत्पन्न हुई थीं, यही उनकी शक्ति भी है और सीमा भी। सुमित्रानंदन पंत ब्रैकेट में 1900 ईस्वी से 1977 ईस्वी की देन मुख्यतः काव्य भाषा और शिल्प के क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। पल्लव के प्रवेश में पंत ने प्रसंगवश कविता की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अस्पष्ट होते हुए भी यह परिभाषा कविता की व्यापकता और गंभीरता की प्रतिष्ठा करती है। विशेषतः कविता संबंधी रीतिकालीन धारणा के विरुद्ध काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की सीमाओं की ओर संकेत करते हुए उन्होंने नए भाव बोध की आवश्यकता के अनुरूप खड़ी बोली के पक्ष में यह कहा कि हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा, जिसमें हम हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। काव्य भाषा में बिंब योजना पर बल देते हुए पंत ने कहा कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टि से उन्होंने हिंदी के कुछ शब्दों के नाद में निहित चित्रों का विवेचन भी प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने खड़ी बोली की कविता के उपर्युक्त भावानुसारी छंदों की प्रकृति का विस्तार से विचार किया और मुक्त छंद की संभावनाओं को रेखांकित किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि पल्लव के प्रवेश से एक कला मर्मज्ञ कवि के सूक्ष्म शिल्प बोध का परिचय मिलता है, और यह असंदिग्ध भाव से कहा जा सकता है कि इस कला विवेचन ने आधुनिक कविता के आस्वाद के लिए समर्थ पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। पंत ने पल्लव के प्रवेश के बाद अपने अन्य काव्य संकलनों में भी पृष्ठ संख्या 55 यथासंभव विस्तृत भूमिकाएं लिखीं, जिनमें आधुनिक कवि दो का पर्यालोचन 1941 ईस्वी विशेष उल्लेखनीय है। यह एक कवि की अपनी काव्य यात्रा का ही ऐतिहासिक पर्यालोचन नहीं है, बल्कि इसमें छायावाद और प्रगतिवाद दो काव्य धाराओं का भी संतुलित मूल्यांकन प्राप्त होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि परिणाम में कम होते हुए भी ये निबंध एक कवि की गंभीर विवेचन क्षमता की पुष्टि करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961 ईस्वी की आलोचनाएं उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही पंत की आलोचनाओं से सर्वथा भिन्न है। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा मानने वाले निराला की आलोचनाएं प्रायः विवादात्मक हैं, किंतु इन विवादात्मक आलोचनाओं में एक दक्ष व्यवहारिक समीक्षक का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। पंत और पल्लव 1927 ईस्वी शीर्षक निबंधमाला में उन्होंने पंत की कविताओं का विश्लेषण बड़ी सूक्ष्मता से किया है। यह दूसरी बात है कि उस विश्लेषण की परिणति प्रायः दोष दर्शन में ही हुई है। दोष दर्शन में अतिरेक के बावजूद कहीं कहीं निराला ने अत्यंत सूक्ष्म कला दृष्टि का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए हिलाते अधर प्रवाल में हिलाते क्रिया के अनौचित्य पर आपत्ति करते हुए हिल मोती का सा दाना में हिल के औचित्य का समर्थन, यह काव्य मर्मज्ञता पंत की प्रशंसा में भी उतनी ही खूबी से प्रकट हुई है जैसे जनन श्याम की वंशी से ही कर दे मेरे सरस वचन का अर्थोद्घाटन। मेरे गीत और कला निराला का दूसरा निबंध है, जिसमें एक विदग्ध कवि की गहरी काव्य मर्मज्ञता पूरे वैभव के साथ व्यक्त हुई है। पंत और पल्लव यदि विध्वंसात्मक निबंध है तो मेरे गीत और कला अपने पक्ष समर्थन में लिखा हुआ विधेयात्मक निबंध है। इस निबंध में निराला ने जूही की कली शीर्षक कविता की जो विस्तृत अर्थ मीमांसा की है, वह हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा का प्रथम तथा अप्रतिम दस्तावेज है। इस कविता की व्याख्या के प्रसंग में निराला ने हिंदी में पहली बार कविता के अवयविक सिद्धांत ब्रैकेट में ऑर्गेनिक थियरी ऑफ पोएट्री का निर्वचन किया। उन्होंने लिखा है कि यह ऐसी रचना नहीं है कि सूक्त रूप इसका एक अंश उद्धृत किया जा सके। मेरी छोटी रचनाएं लिरिक्स और गीत ब्रैकेट में सांग्स प्रायः ऐसे ही हैं। इसकी कला संपूर्ण रूप में है, खंड में नहीं। ब्रैकेट प्रबंध प्रतिमा पृष्ठ 210। पंत जी से अपनी कला की विशिष्टता को अलगाते हुए निराला ने इसी प्रसंग में पृष्ठ संख्या 56 आगे लिखा है कि खंडार्थ में पंत जी की कला बहुत ही बन पड़ी है। उनके प्रशंसकों की दृष्टि इन्हीं खंड रूपों में बंध गई है, वह विस्तृत होकर वृहत विवेचन में नहीं जा सकी। वही पृष्ठ 217। इसके अतिरिक्त परिमल की भूमिका 1930 ईस्वी भी हिंदी आलोचना की अनूठी उपलब्धि है। इस भूमिका का महत्व पल्लव के प्रवेश से किसी प्रकार कम नहीं। इसमें मुक्त छंद का जो गहन विवेचन प्रस्तुत किया गया है, वह हिंदी में एक नए छंद शास्त्र की आधारशिला है। छंदों की मुक्ति की आवश्यकता को स्वच्छंदता के जीवन मूल्य से जोड़ते हुए निराला ने कहा, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता के मुक्त छंदों के शासन से अलग हो जाना। मुक्त छंद के परिणाम के प्रति सशंकता के विरुद्ध उन्होंने आश्वस्त किया, मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, प्रत्युत उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है जो साहित्य के कल्याण की मूल होती है। अपने कथन की साक्षी में निराला ने परंपरा का हवाला दिया। वेदों में काव्य की मुक्ति के ऐसे हजारों उदाहरण हैं, बल्कि 95% मंत्र इसी प्रकार मुक्त हृदय के परिचायक ही रहे हैं। उन विद्वानों के प्रति निराला ने आक्रोश व्यक्त किया जो उनकी छंद सृष्टि का उपहास रबड़ छंद और केचुआ छंद कहकर करते हैं, परंतु वेदों को ईश्वरकृत मानते हुए उनकी छंद रचना के विरोध का साहस नहीं करते। उन्होंने छंद रचना की प्रवृत्ति को आदिकाल से चले आते मानव वृत्तियों के इतिहास और उसकी बंधन मुक्ति की मौलिक प्रवृत्ति के संदर्भ में ही समझने का आग्रह किया। वैदिक साहित्य में इस प्रकार की स्वच्छंद सृष्टि को देखकर हम तत्कालीन मनुष्य स्वभाव की मुक्ति का अंदाज लगा लेते हैं। परवर्ती काल में ज्यों-त्यों चित्र प्रियता बढ़ती गई है, साहित्य में स्वच्छंदता की जगह नियंत्रण तथा अनुशासन प्रबल होता गया है, यह जाति ज्यों-त्यों कमजोर होती गई है। सहस्त्रों प्रकार के साहित्यिक बंधनों से जाति स्वयं भी बंध गई। अब उसे अपनी मुक्ति के लिए उन तमाम बंधनों को पार करना होगा। इस समय के और पराधीन काल के काव्य अनुशासनों को देखकर हम जाति की मानसिक स्थिति को भी देख ले सकते हैं। अनुशासन के समुदाय चारों तरफ से उसे जकड़े हुए हैं। साहित्य के साथ साथ राज्य, समाज, धर्म, व्यवसाय सभी कुछ पराधीन हो गए हैं। पृष्ठ संख्या 57। अंततः साहित्य की मुक्ति के आधार और मुक्त छंद की बुनियाद के बारे में निराला ने स्थापना की कि साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है, और हिंदी में मुक्त छंद कवित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी की साहित्यिक मान्यताएं काव्य और कला तथा अन्य निबंध के रूप में संग्रहित हैं। इन निबंधों से यह स्पष्ट है कि इनकी रचना के मूल में छायावाद पर लगाए गए आक्षेपों के परिहार की प्रेरणा प्रधान है। यह बात अलग है कि प्रसाद ने इस संदर्भ में छायावाद की मनोभूमि को भी स्पष्ट किया है और काव्य से संबद्ध अनेक प्रश्नों पर विचार भी किया है। प्रसाद ने अपने विचार क्रम में जिन प्रश्नों को उठाया है, उनके सूत्र आचार्य शुक्ल की आलोचना में निहित हैं। उनका प्रमुख आग्रह छायावाद को भारतीय चिंतन परंपरा के विकास की स्वाभाविक परिणत के रूप में प्रतिष्ठित करने का है। कहना व्यर्थ है कि अपनी परंपरा से जोड़कर छायावाद को समझाने का यह आग्रह इसलिए पैदा हुआ क्योंकि छायावाद की विषय वस्तु और भावभूमि के विरुद्ध शुक्ल जी की प्रमुख आपत्ति यह थी कि वह उसे बंगला के माध्यम से आने वाला पश्चिमी प्रभाव मानते थे। प्रसाद ने अपने पहले ही निबंध में हेगेल के कला विभाजन से भिन्न भारत में काव्य विषयक दृष्टिकोण के वैशिष्ट्य को स्पष्ट करते हुए अपना मत भारतीय विचारधारा के पक्ष में दिया। शुक्ल जी ने ज्ञान योग और कर्मयोग के समकक्ष जिस भावयोग की चर्चा की थी, वह हृदय की मुक्तावस्था ही थी। इसीलिए शुक्ल जी ने रस को सुख दुखात्मक भी माना। प्रसाद के काव्य संबंधी समग्र चिंतन को सामान्य लोकानुभव से ऊपर उठाकर दार्शनिक धरातल प्रदान किया और काव्य का संबंध हृदय से आगे बढ़कर आत्मा से जुड़ा। इस प्रकार शुक्ल जी के शब्दों में जो वाणी हृदय की मुक्ति का विधान करने के कारण काव्य कहलाई, प्रसाद में वही आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति हो गई। संकल्पनात्मक अनुभूति को और स्पष्ट करते हुए प्रसाद ने कहा, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध पृष्ठ 38। इस असाधारण अवस्था को प्रसाद ने पृष्ठ संख्या 58 युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित रहने वाली अवस्था माना है, और श्रेय ज्ञान को भी व्यक्तिगत सत्ता से भिन्न एक शाश्वत चेतनता या ऐसी चिन्मयी ज्ञान धारा जो निर्विशेष रूप से विद्यमान रहती है। वही प्रसाद की यह परिभाषा स्पष्ट ही भारतीय दर्शन की अद्वैतवादी परंपरा के निकट है, जो रस चिंतन का भी मूलाधार है। प्रसाद जी ने इस प्रकार रस चिंतन को साहित्य दर्पण की परंपरा से अलग कर अभिनव गुप्त की शैवाद्वैतवादी परंपरा से जोड़ा। रसचिंतन के क्रम में शुक्ल जी की पहुंच शैवागम की उक्त आनंदवासी परंपरा तक नहीं हो पाई थी। यूं कि काव्य के संदर्भ में आनंद शब्द से उन्हें खास परहेज था, क्योंकि वह उसका व्यवहारिक सामान्यार्थ ही देखते थे। ऐसी स्थिति में उनके लिए रसानुभूति में कोटि क्रम निर्धारण बहुत अस्वाभाविक नहीं है। प्रसाद ने शुक्ल जी की इस मान्यता से स्पष्ट विरोध प्रकट किया है। इधर एक निम्न कोटि की रसानुभूति की भी कल्पना हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जब किसी अत्याचारी के अत्याचार को हम रंगमंच पर देखते हैं, तो हम उस नट से अपना साधारणीकरण नहीं कर पाते, फलतः उसके प्रति रोष भाव ही जागृत होता है, या तो स्पष्ट विषमता है। किंतु रस में फल योग अर्थात अंतिम संधि मुख्य है। इन बीच के व्यापारों में जो संचारी भावों के प्रतीक हैं, रस को खोजकर उसे छिन्न भिन्न कर देना है। ये सब मुख्य रस वस्तु के सहायक मात्र हैं। अन्वय और व्यतिरेक से दोनों प्रकार के वस्तु निर्देश किया जाता है, इसलिए मुख्य रस का आनंद बढ़ाने में ये सहायक मात्र ही हैं। वह रसानुभूत निम्न कोटि की नहीं होती। वही पृष्ठ 82-83। किसी कृति के सारभूत प्रभाव के आधार पर रस निर्णय करने की बात आधुनिक युग में पहले पहल प्रसाद ने ही कही। प्रसाद ने जहाँ भारतीय नाटकों में रस की आनंदवादी परंपरा को देखा समझा, वहाँ पश्चिम में महाकाव्यों में जीवन के प्रति त्रासदीय दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया और प्राचीन भारतीय काव्यादर्श एवं ग्रीक काव्यादर्श के इस अंतर को पहचान कर भी दोनों के बीच दार्शनिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने इसलिए करुण रस और करुणाजन्य, दया और सहानुभूति में भेद किया। प्रसाद ने छायावाद की जो परिभाषा प्रस्तुत की, उसमें बिच्छित, लावण्य आदि की चर्चा तो की ही गई है, लेकिन उन्होंने यथार्थवाद के संदर्भ में छायावाद की जो व्याख्या की, वह विशेष महत्वपूर्ण है। उनसे पहले की बहस पृष्ठ संख्या 59 द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता बनाम छायावाद को लेकर की जाती। प्रसाद ने इस बहस का रुख बदलकर इसे यथार्थवाद बनाम छायावाद का रूप ही नहीं दिया, बल्कि छायावाद को यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात से जोड़कर देखा। प्रसाद ने व्यवहारिक आलोचना नहीं की, लेकिन शुक्ल जी के द्वारा छायावाद पर किए गए आरोपित रहस्यवाद के आक्षेप के परिहार के लिए रहस्यवाद शीर्षक से जो निबंध लिखा, उससे न केवल छायावाद की रहस्य चेतना का स्पष्टीकरण हुआ, बल्कि उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य में रहस्यवादी परंपरा की संक्षिप्त रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इस निबंध से प्राचीन परंपरा के संदर्भ में छायावाद की रहस्य चेतना ही समझ में नहीं आती, बल्कि स्वयं प्रसाद के परंपरा बोध का भी अच्छा प्रमाण मिलता है। निष्कर्ष रूप में प्रसाद ने छायावाद की आलोचना के विषय में तीन काम किए। एक तो उन्होंने विजातीयता के सापेक्ष से मुक्त करके छायावाद की भारतीयता की निर्णायक रूप से प्रतिष्ठा की। दूसरे, जो लोग छायावाद को केवल काव्य शैली मात्र मानते थे, उनकी मान्यता का खंडन कर प्रसाद ने छायावाद के शैली चमत्कार का संबंध अनुभूति के चमत्कार से जोड़ा। और तीसरे, छायावादी कविता के सौंदर्य में निहित शिवत्व का दार्शनिक स्तर पर उद्घाटन करके उन्होंने सौंदर्यवादी एकांगिता के आरोप का प्रत्याख्यान किया। कुल मिलाकर छायावाद के सबसे समर्थ सिद्धांत शास्त्री जयशंकर प्रसाद ही थे। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी से 1987 ईस्वी छायावाद कवियों में कनिष्ठ थीं। उन्होंने जिस समय साहित्य में पदार्पण किया, उस समय तक छायावाद प्रतिष्ठित हो चुका था और छायावाद को लेकर आरोप प्रत्यारोपों और विवादों का सिलसिला समाप्ति पर था। ऐसी स्थिति में छायावाद पर किए गए आक्षेपों के बारे में कुछ कहने का या चुनौतियों का सामना करने का प्रश्न महादेवी के लिए नहीं उठा। उनका योगदान इस दृष्टि से हो सकता था कि वह ज्येष्ठ कवियों की कही गई बातों को अधिक व्यवस्थित, तर्कसंगत और पांडित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर दें। यामा और दीपशिखा की भूमिकाओं में और विवेचनात्मक गद्य के स्फुट लेखों में, जो बाद में कुछ परिवर्धन के साथ साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नाम से प्रकाशित हुए, महादेवी ने यही काम किया। उन्होंने काव्योचित अलंकृत गद्य में, जिसमें गहन पांडित्य और गरिष्ठता का आभास मिलता है, छायावाद संबंधी प्रश्नों को निश्चित पृष्ठ संख्या 60 परिभाषाएं देने का प्रयत्न किया। उनकी प्रलंबित वाक्य रचना और अलंकार बोझिल शब्दावली, विद्वता और दुरूहता का आभास देने पर भी मूलतः छायावादी है। छायावाद संबंधी आलोचना को उनकी दो मौलिक देने स्वीकार की जा सकती हैं। अपने गीत विषयक निबंध में उन्होंने लोक गीतों के आधार पर गीत काव्य की विशेषताएं बताई और छायावाद संबंधी निबंध में प्रगतिशील आंदोलन की रोशनी में छायावाद की सामाजिकता और यथार्थवादिता की व्याख्या की। छायावादी कविता में रहस्यवादिता के प्रश्न पर भी उन्होंने एक लंबा लेख लिखा, शायद इसलिए कि अन्य समानधर्मा कवियों की तुलना में रहस्यवाद की छाया सबसे अधिक महादेवी की कविताओं में ही खोजने की कोशिश हिंदी आलोचना में की गई। उनकी गद्य रचनाओं की पहचान उनके दृष्टिकोण और सरोकारों का उन्होंने परिमाण में कविता की तुलना में कहीं अधिक गद्य रचनाएं की। इनमें संस्मरणात्मक शब्द चित्रों के अलावा विविध सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया गया है। इन विषयों में संस्कृत की अवधारणा के साथ भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि और उससे जुड़े शासन, शिक्षा, नारी से प्राकृतिक परिवेश तक तमाम पक्ष शामिल हैं। रचनात्मक साहित्य के अलावा भी उन्होंने व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में भी भाषा के प्रश्न पर लिखा और देश और राष्ट्रभाषा के रिश्ते पर भी। वह कर्म से अध्यापक थीं। शिक्षा का उद्देश्य जैसे विषय पर उनकी नजर जाना स्वाभाविक था, पर आज का परिवेश और अध्यापक जैसे विषय पर उनका निबंध वर्तमान परिस्थिति में भी बहुतों को अपने दायित्व के बारे में पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा, इसमें संदेह नहीं। अपने समय के सामाजिक जीवन के बारे में महादेवी ने बड़ी सतर्कता और लगन से विचार किया। हमारी समस्याएं, सामयिक समस्या, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या जैसे व्यापक विषयों से लेकर समाज और व्यक्ति जैसे केंद्रित विषय उनकी विचार परिधि में आते हैं। इनके अलावा सफल जीवन की कसौटी और कसौटी पर शीर्षक से उन्होंने व्यावहारिक जीवन को केंद्रित कर दो परामर्शदायिनी टिप्पणियां लिखीं। शीर्षक के अनुरूप इनमें उनकी जीवनापेक्षी मूल्य चिंता व्यक्त हुई है। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में पृष्ठ संख्या 61। उनके सोच की नैतिकता भले ही कुछ अतिशायी प्रतीत हो सकती है, परंतु इनमें ऐसे अनेक विचार सूत्र मौजूद हैं जिनमें समय की सरहदों को अतिक्रमित करने की संभावना बराबर बनी रहेगी। कहना ना होगा, महादेवी की ये सारी चिंताएं उनके रचनाकार मानस की चिंताएं हैं, जिनका प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध साहित्य से है, जो नाना रूपों में साहित्य के विषय वस्तु में उसके कथ्य में प्रतिफलित होती हैं। ऐसे प्रसंगों में महादेवी का स्त्री जीवन संबंधी चिंतन विशेष ध्यान देने योग्य है। स्त्री विमर्श की पताका फहराने वाले आलोचकों के लिए इनमें बहुत कुछ ऐसा है जिसकी मौलिकता की दावेदारी वे अज्ञानवश पीछे मुड़कर देखे बिना कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो स्त्री स्वतंत्रता के प्रश्न पर कुछ विवेक, कुछ सब्र और ठहराव के साथ सोचकर नतीजे निकालने की जरूरत की तरफ इशारा करता है। कला और हमारा चित्रमय साहित्य में उन्होंने स्त्री देह प्रदर्शन की प्रवृत्ति के बारे में टिप्पणी की। इस समानता के युग में स्त्री मांगने गई थी अपनी स्वतंत्रता और दे आई। इस प्रकार स्त्रीत्व के प्रदर्शन का वचन बाजार के पोस्टर, दवा के तेल के विज्ञापन, पत्र पत्रिकाओं का अधिकांश वाक्पट, मंच, सब जगह स्त्री का जैसा प्रदर्शन पुरुष करना चाहते हैं अकुंठित भाव से करते हैं। यदि वह बाधा डालती है तो इन्हीं बीभत्स प्रदर्शनों को स्वाधीनता का चिन्ह बताकर उसे समझा दिया जाता है। वह स्वयं यह नहीं जानती कि इनसे उसका आदर हो रहा है या अनादर, पहले से अच्छी दशा है या बुरी। वह सोचती है उसे संसार के उन्मुक्त वातावरण में स्वच्छंद भाव से आने जाने का अधिकार मिल गया है, जिसके लिए वह युगों से लालयित थी। महादेवी साहित्य 4 पृष्ठ 367। सोचने की जरूरत है कि क्या इस कथन की प्रासंगिकता अपने रचना काल से अब तक बरकरार नहीं है? क्या स्त्री विमर्श के एजेंडे में लगातार दोहराई जाने वाली देह की स्वतंत्रता की मांग का विवेक सम्मत ढंग से खुलासा करने की जरूरत नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो स्थिति वही बनती है जिसकी तरफ महादेवी का इशारा किए एक युग बीत गया। महादेवी के वर्तमान में स्त्री जीवन से संबद्ध जितनी महत्वपूर्ण समस्याएं थी, उनमें से अधिकांश को उन्होंने विषय बनाया। इनमें नारीत्व के अभिशाप, की ही नहीं उसके अर्थ स्वातंत्र्य की भी चर्चा की गई है। उन्होंने हिंदी स्त्री के पत्नीत्व और आधुनिक नारी या हमारी श्रृंखला की पृष्ठ संख्या 62 कड़ियाँ या फिर घर और बाहर स्त्री की स्थिति को तो विचारणीय समझा है। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने युद्ध जैसी असाधारण स्थिति के प्रति स्त्री और पुरुष के दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को उनकी सामाजिक भूमिका और परिवार में उनकी स्थिति और दायित्व तो बोध से जोड़कर परखने की कोशिश की। उनकी नज़र में पुरुष ने एक नए आविष्कार के समान स्त्री के सम्मुख यह तर्क रखा कि तुम्हारी युद्ध विमुखता के मूल में दुर्बलता है। अपने स्वभाव की यह नवीन व्याख्या सुनकर मानो नारी ने अपने आप को एक नए दर्पण में देखा जिसने उसे कुत्सित और दुर्बल प्रमाणित कर दिया। महादेवी साहित्य 4 पृष्ठ 302। इस पाठ का कुल जमा नतीजा यह हुआ कि आज के पुरुष ने स्त्री पर जो विजय पाई है वह मानव जाति के लिए चाहे उपयोगी ना हो परंतु उसके संकीर्ण स्वार्थ के लिए आवश्यक है। वही पृष्ठ 303। जरूरी नहीं कि स्त्री प्रश्न पर महादेवी के सभी निष्कर्षों या मान्यताओं से सबकी सहमति हो, पर आलोचना के विमर्शवादी चिंतन में उनका चिंतन एक जरूरी संदर्भ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।